नमस्ते, मैं आराव हूँ। 993 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द डाकलिज्म। क्रिश्चियन रूडर की डेटा आधारित गैर कथा पुस्तक है, जो इंटरनेट पर छोड़े गए मानवीय व्यवहार के विशाल निशानों को सामाजिक अध्ययन के स्रोत की तरह पढ़ती है। ओकेक्यूपिड के सह संस्थापक रहे रूडर मुख्यतः डेटिंग मंच के समेकित और अनाम आंकड़ों, साथ ही गूगल, फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के उदाहरणों से यह जांचते हैं कि लोग प्रेम, आकर्षण, नस्ल, पहचान, भाषा और राजनीति के बारे में वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य किसी व्यक्ति का निदान करना नहीं, बल्कि बड़े समूहों में उभरने वाले पैटर्न दिखाना है। इसका केंद्रीय दावा है कि सर्वेक्षणों में लोग जो कहते हैं और डिजिटल परिवेश में जो चुनते, खोजते या लिखते हैं, उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। रूडर सांख्यिकी को केवल तकनीकी विषय नहीं रहने देते, बल्कि ग्राफों, तुलनाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के जरिए उसे मानवीय कथा बनाते हैं। साथ ही वे इस नई दृश्यता की कीमत पर भी विचार करते हैं, विशेषकर गोपनीयता, सहमति और डेटा से निकाले गए निष्कर्षों की शक्ति पर। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, घोषित पसंद और वास्तविक ऑनलाइन व्यवहार के बीच का अंतर। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि लोगों की आत्म छवि और उनकी वास्तविक पसंद हमेशा एक जैसी नहीं होती। पारंपरिक राय सर्वेक्षण प्रायः उत्तरदाता की स्मृति, सामाजिक स्वीकार्यता की चिंता और अपने बारे में बेहतर दिखने की इच्छा से प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत, डेटिंग मंच पर भेजे गए संदेश, दिए गए अंक, देखे गए प्रोफाइल और किए गए चुनाव व्यवहार के प्रत्यक्ष संकेत बन सकते हैं। रूडर इसी अंतर का उपयोग आकर्षण, नस्लीय प्राथमिकताओं और संबंधों के संदर्भ में करते हैं। उनका तर्क यह नहीं है कि डिजिटल क्रिया किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र का अंतिम प्रमाण है, बल्कि लाखों छोटे चुनावों को जोड़ने पर वे ऐसे सामूहिक रुझान प्रकट कर सकते हैं जिन्हें लोग स्वयं स्वीकार न करें या साफ तौर पर देख ना पाए। यह दृष्टि असुविधाजनक भी है, क्योंकि आंकड़े उन पूर्वाग्रहों को सामने ला सकते हैं जिन्हें समाज सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करता है। फिर भी पुस्तक यह सावधानी भी सिखाती है कि किसी मंच के उपयोगकर्ताओं को पूरी आबादी मान लेना गलत होगा। ओकेक्यूपिड के आंकड़े उसके उपयोगकर्ताओं और उस मंच की परिस्थितियों को दर्शाते हैं। इसलिए व्यवहारिक डेटा को ईमानदारी का स्वचालित पर्याय नहीं, बल्कि संदर्भ सहित जांचे जाने वाले प्रमाण के रूप में पढ़ना चाहिए। दूसरा, बड़े नमूनों से पैटर्न देखने की सांख्यिकीय क्षमता। रूडर के लिए बड़े डेटा का मूल्य केवल उसके आकार में नहीं, बल्कि उस क्षमता में है जिससे अनियमित व्यक्तिगत घटनाओं के पीछे नियमित सामूहिक पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। एक व्यक्ति का संदेश, एक खोज या एक डेट अनोखी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं को देखने पर औसत वितरण और समूहों के बीच अंतर अधिक स्पष्ट होते हैं। पुस्तक इसे बड़े नमूनों के सिद्धांत से जोड़ती है, जिसमें बार बार दिखने वाली प्रवृत्तियां एकल अनुभवों की तुलना में अधिक विश्वसनीय संकेत दे सकती हैं। यही तरीका डेटिंग में उम्र, आकर्षण और प्रतिक्रिया जैसे विषयों को मापने योग्य बनाता है। रूडर के चित्र और ग्राफ इस बात पर जोर देते हैं कि सही सवाल आंकड़ों से निकलने का इंतजार करता है, केवल पहले से तय धारणा की पुष्टि नहीं। फिर भी बड़े नमूने कारण और परिणाम को अपने आप सिद्ध नहीं करते। कोई सहसंबंध स्थान, मंच की रूपरेखा, उपयोगकर्ता चयन या समय के प्रभाव से भी बन सकता है। पुस्तक की उपयोगी बौद्धिक सीख यह है कि डेटा से चौंकना पर्याप्त नहीं है। नमूना किसका है, माप क्या रहा है और परिणाम किन सीमाओं में लागू है, ये प्रश्न निष्कर्ष की गुणवत्ता तय करते हैं। तीसरा, डेटिंग डेटा में आकर्षण। उम्र और नस्लीय प्राथमिकताओं की असहज तस्वीर, डेटाक्लिज्म का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन डेटिंग को मानवीय चयन के प्रयोगस्थल की तरह देखता है। यहाँ लोग अपनी पसंद का वर्णन भी करते हैं और संदेश, अंक तथा संपर्क के जरिए उसका व्यवहारिक रूप भी दिखाते हैं। रूडर पुरुषों और महिलाओं की आकर्षण संबंधी रेटिंग, उम्र के प्रति झुकाव और विभिन्न नस्लीय समूहों के बीच संपर्क की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं। इन निष्कर्षों का महत्व किसी सरल नियम, जैसे हर व्यक्ति एक ही प्रकार का साथी चाहता है, में नहीं है। असली बिंदु यह है कि व्यक्तिगत विविधता के बावजूद बड़े समूहों में कुछ संरचनात्मक असमानताएं और सांस्कृतिक प्राथमिकताएं लगातार दिखाई दे सकती है। विशेष रूप से नस्ल के संदर्भ में पुस्तक दिखाती है कि सार्वजनिक समानतावादी आदर्श और निजी चयन अलग दिशा में जा सकते हैं। यह विषय संवेदनशील है, इसलिए आंकड़ों को नैतिक निर्णय या जैविक नियति की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। डेटिंग मंच पर चुनाव उपलब्ध लोगों, स्थानीय जनसंख्या, मंच की डिजाइन और सामाजिक धारणाओं से प्रभावित होते हैं। रूडर की जांच इस अंतर को चर्चा में लाती है कि इच्छा निजी लग सकती है, लेकिन वह व्यापक सामाजिक इतिहास और शक्ति संबंधों से पूरी तरह अलग नहीं होती। यही कारण है कि पुस्तक के निष्कर्ष रोचक होने के साथ असुविधाजनक भी है। चौथा भाषा, खोज और सामाजिक मंचों से सामूहिक मनोदशा का अध्ययन रूडर डेटिंग तक सीमित नहीं रहते। वे ऑनलाइन भाषा और खोज व्यवहार को यह समझने के साधन के रूप में देखते हैं कि समाज किन विषयों पर ध्यान देता है, किन शब्दों का अर्थ बदलता है और समूह सार्वजनिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। गूगल खोजों के रुझान, फेसबुक की पसंद और ट्विटर की सामूहिक प्रतिक्रिया जैसे उदाहरणों से पुस्तक बताती है कि डिजिटल निशान कभी कभी सांस्कृतिक परिवर्तन को पारंपरिक सर्वेक्षणों से अधिक तेजी से दर्ज करते हैं। शब्दों की लोकप्रियता या किसी विषय पर अचानक बढ़ी खोज को समय के साथ देखने से सामाजिक चिंता, जिज्ञासा या राजनीतिक तनाव के संकेत मिल सकते हैं। ट्विटर के संदर्भ में रूडर यह भी देखते हैं कि आक्रोश नेटवर्क के माध्यम से मिलकर बढ़ सकता है, जिससे सार्वजनिक निंदा तेज और व्यापक बनती है। दूसरी ओर ऑनलाइन समुदाय सहयोग और सहायता के स्थल भी हो सकते हैं, जैसे कठिन स्वास्थ्य या मानसिक अनुभवों से जूझ रहे लोगों के लिए सहायक संवाद। इस दोहरे स्वरूप से पुस्तक का मुख्य सबक निकलता है, इंटरनेट ना तो स्वभावतः उदार है ना केवल विषैला। वह उपयोगकर्ताओं की भाषा, संस्थागत प्रोत्साहनों और मंच की बनावट को बढ़ाकर दिखाता है। इसलिए डिजिटल रुझान पढ़ते समय शोर, विडंबना, संगठित अभियान और संदर्भ को अलग करना जरूरी है। अंत में डेटा की नई दृश्यता के साथ गोपनीयता और जवाबदेही का प्रश्न पुस्तक का अंतिम और व्यापक निहितार्थ गोपनीयता है। रूडर जिस विश्लेषण की संभावना से उत्साहित है, वही संभावना ये चिंता भी पैदा करती है कि रोजमर्रा की क्लिक, खोज, संदेश और पसंद से लोगों के बारे में कितना कुछ अनुमानित किया जा सकता है। समय के डेटा व्यक्तिगत नाम हटाने पर भी उपयोगी पैटर्न दे सकता है, लेकिन डेटा का पुनः पहचान से जुड़ना व्यावसायिक उपयोग और संस्थागत शक्ति गंभीर जोखिम है। डेटा टूरिज्म इस तनाव को सीधे सामने रखती है। एक और बड़े पैमाने का डेटा रूप फैलाव सामाजिक प्रवृत्तियों और सार्वजनिक समस्याओं को समझने में सहायता कर सकता है। दूसरी ओर वही ढांचा लोगों को उत्पाद जोखिम स्कोर या लक्षित विज्ञापन के लिए वर्गीकृत कर सकता है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं कि विश्लेषण सटीक है या नहीं, प्रश्न यह भी है कि डेटा किसने जुटाया, किस सहमति से इस्तेमाल किया, किसे लाभ मिला और गलती होने पर जवाबदेही किसकी होगी। रूडर का काम पाठक को यह समझने में मदद करता है कि डिजिटल सुविधा अक्सर व्यक्तिगत सूचना के बदले मिलती है। इससे डेटा साक्षरता का अर्थ केवल ग्राफ पढ़ना नहीं रहता, इसमें अधिकार, नियंत्रण, पारदर्शिता और नैतिक सीमाओं पर विचार भी शामिल हो जाता है। निष्कर्ष में, डेटा टूरिज्म उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें मानव व्यवहार, ऑनलाइन डेटिंग, सामाजिक शोध, सांख्यिकी या डिजिटल गोपनीयता में रुचि है। इसे पढ़ने के लिए गणित का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि रूडर ग्राफ और आंकड़ों को संवादात्मक ढंग से समझाते हैं। फिर भी इससे सबसे अधिक लाभ उस पाठक को होगा जो चौंकाने वाले निष्कर्ष को तुरंत अंतिम सत्य मानने के बजाय नमूने, संदर्भ और माप की पद्धति पर प्रश्न करना चाहता है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ डिजिटल जीवन के बारे में अधिक सजग दृष्टि है। पाठक समझ सकता है कि ऑनलाइन गतिविधियां केवल निजी अभिव्यक्ति नहीं बल्कि विश्लेषण योग्य व्यवहारिक निशान भी है। बौद्धिक स्तर पर यह सर्वेक्षण आधारित सामाजिक विज्ञान और विशाल डिजिटल डेटा के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इसी के साथ यह बताती है कि अधिक डेटा का अर्थ अपने आप बेहतर व्याख्या नहीं होता। श्रेणी की अनेक बड़ी डेटा पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता अमूर्त व्यावसायिक दावों में नहीं बल्कि ओकेक्यूपिड के वास्तविक व्यवहारिक आंकड़ों से निकले ठोस प्रश्नों में है। प्रेम, इच्छा, भाषा और पूर्वाग्रह जैसे निजी विषयों को सांख्यिकीय ढंग से देखना इसे अलग बनाता है। इसकी सीमाएं भी याद रखनी चाहिए, विशेषकर मंच विशेष के नमूने और कुछ निष्कर्षों की व्यापकता को लेकर। फिर भी डेटा क्या दिखा सकता है, क्या छिपा सकता है और किसे देखने का अधिकार देता है, इन प्रश्नों पर यह एक सुलभ तथा विचारोत्तेजक पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस्टियन रूडर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।